ਤੇਰੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ।
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੰਡਰਡ ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की शानदार और कामयाब ट्रांसमिशन के बाद अब अपने नाज़रीन के लिए लेकर आए हैं मैच पॉइंट विद डॉक्टर अदनान खान एवरी फ्राइडे रात 9 बजे ओनली ऑन ई आवाज टीवी पर। जानिए क्रिकेट और दीगर खेलों की ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट रिजल्ट लाइव कॉल डिस्कशन दिलचस्प ट्रिविया एंड फैक्ट्स। मैच पॉइंट विद डॉक्टर अदनान खान एवरी फ्राइडे 9 PM ओनली ऑन ई आवाज टीवी और eawaz.com फेसबुक ई आवाज ऑफिशियल ऐप एंड नाउ available on Roku. Download free Roku app in your smart TV today.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗਰੀਬਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 27 ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-450-9664। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Impressive quality of food and top-notch service. Best Aleem in Toronto. Laziz Biryani. Ye hai Mississauga ke Master Biryani and Grill. Inke menu mein hai shamil biryani, haleem, pie, nihari, chicken tikka, kebab and fresh naans. Also special halwa puri served on Saturdays. All reasonably priced at 2580 Shepherd Avenue, Mississauga, Newen Center. Call at 905-276-0666. 905-276-0666.
मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी का वेन्यू बहुत ही यूनिक हो।
तो फिर तो हमें सिर्फ कैलेडन कंट्री क्लब को ही चूज करना चाहिए।
कैलेडन कंट्री क्लब आपकी ब्रेथ टेकिंग सेरेमनीज के लिए, जहाँ पर आप वॉकआउट टेरेस के साथ खूबसूरत रिवर रूम 250 गेस्ट के लिए बुक करवा सकते हैं और हमारे गोल्फ कोर्स और क्रेडिट रिवर की सीनिक ब्यूटी का भी लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एवर ऑन्टारियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंक्वेट हॉल मेड ऑफ ग्लास, ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें तकरीबन 600 गेस्ट की कैपेसिटी है। शादी ब्याह की तकरीब हो या फिर मेहंदी अकीका, हर तरह की पार्टी के लिए कैलेडन कंट्री क्लब इज द परफेक्ट फॉर योर ड्रीम इवेंट्स। कॉल 416-887-4564, 2121 ओल्ड बेसलाइन रोड, कैलेडन। कैलेडन कंट्री क्लब।
मुझे फैमिली स्पॉन्सर करना, कैसे अच्छे से इमिग्रेशन कंपनी का नंबर बोलो जे।
ICC इमिग्रेशन MD RD नु मिलो तो अनु सही सलाह दे के तो अड़ा केस बहुत जल्दी फाइल कर देंगे।
MD RD ओ IC
नहीं ICC।
ओके, एड्रेस बोलो।
1137 डेली रोड ईस्ट मिसिसागा, टेलीफोन 905-400-8224।
ओ ICC।
फिर ICC ICC बोलो।
ICC इमिग्रेशन 905-461-2424।
हाँ, एदा बढ़दी गल।
आईओ
जी साहब, करा वेलकम बैक अगेन। एंड 6:03 और 36 सेकेंड हमारी घड़ी में चुके हैं। चलिए साहब, एक और खूबसूरत गीत की तरफ ले चले। आपको फिल्म चकोरी देखी थी आपने? चकोरी फिल्म नदीम साहब की फिल्म थी चकोरी। इस फिल्म का एक गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। समा फरमाइए।
तुमको ढूंढ रही है ये बहारें। तुम तो ढूंढ रही है बोझल बोझल झूमते बादल छाए हैं
अरमानों की हर मंजिल पर तू है तुम्हारे साए
बिन तेरे हर कली हार है
हमको तो सजना तुमसे न जाने कितना प्यार है
कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बाहर ये समां ओ हो जब फूल खिलेंगे तुमको ये गीत पुकारेंगे
दिल तो तुमको दे चुके हैं जान भी तुम पर वारेंगे
दिन तेरे हर कली हार है
हमको तो सजना तुमसे न जाने प्यार है
कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समां
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट दांत निकलवाने हैं लगवाने हैं क्राउन्स हैं ब्रिजेस हैं इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्लर के इंटरसेक्शन पे बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं अपॉइंटमेंट बनाइएगा साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट 9054578661
एशियन फूड सेंटर इंडियन कैनेडियन साफ सुथरी ग्रोसरी दे नाल
कारकार विच मशहूर हो चुकिया एशियन फूड सेंटर हमेशा सस्ते रेट ते वधिया सेवावां देण लई वचनबद्ध है
अपने एरिया विच पेंदे किसे भी स्टोर विच जाओगे तो जरूर बचत पाओगे
वधेरी जानकारी लई एशियन फूड सेंटर दा इक्को इक नंबर याद रखो 416-740-3262
एशियन फूड सेंटर 416-740-3262
कैनेडियन इमिग्रेशन के कवानीन वक्तन फवक्तन तब्दील होते रहते हैं जिसके लिए जरूरी है कि आपकी इमिग्रेशन का केस माहिराना तरीके से अप्लाई किया जाए मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और हमारी फर्म हर तरह के केसेस चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो या बिजनेस क्लास फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप हो या विजिटर वीजा कामयाब तरीके से सबमिट करती है हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है हमारे लॉ ऑफिस में ऑसबर्न बार्नवेल बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर हैं जो डिपोर्टेशन रुकवाने और कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के पेचीदा केसेस करने में 25 साल तजर्बा रखते हैं आप मुझसे 9055130012 पर रابطہ कर सकते हैं
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज़ नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
मेसमराइज ऑप्टिकल, दूर या करीब की नजर कमजोर है, दुनिया के खूबसूरत रंगों को देखना, लिखना, पढ़ना, अपने बच्चों की पोरों, उनके बालों, उनके चेहरे को एंजॉय करना, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, बच्चों के लिए एचडी डिजिटल लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज, फ्री बाईफोकल प्रोग्रेसिव लेंसेज, फ्री ट्रांजिशन एसवी लेंसेज, 50% तक ऑफ। मेसमराइज ऑप्टिकल तमाम इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। 1780 मार्कम रोड, यूनिट B2, स्कारब्रो में, शॉपर्स ड्रग मार्ट वाले प्लाजा में। मेसमराइज ऑप्टिकल, अपनी नजर चेक करवाइए। 4163350786 3350786।
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं, कॉल हैरी सॉन नाउ 6472281000 हैरी सॉन्द ऑफ मेजेस्टिक मॉर्गेजेस।
रूबी ज्वेलर्स, खुशी के मौके पर गोल्ड और डायमंड की खरीदो फरोख्त में। 28 साल से रूबी ज्वेलर्स आपके फैमिली ज्वेलर्स, डायमंड इयररिंग्स, बैंगल्स, डायमंड रिंग्स इन प्लैटिनम। साइज लेने से मेकिंग और डिलीवरी तक आपकी सेटिस्फेक्शन की गारंटी। पाकिस्तान, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, दिलकश डिजाइन, कंगना, बिंदिया, झूमर, 7080 एयरपोर्ट रोड, रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी में क्वालिटी के जामिन रूबी ज्वेलर्स। 9056778888 रूबी ज्वेलर्स।
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522
हेरा ट्रैवल। दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करना हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तमाम एयरलाइंस से डील करते हैं। आईटा अप्रूव, टोरंटो की सबसे पुरानी और काबिल एतमाद ट्रैवल एजेंसी। सस्ते और पक्के टिकट के लिए सफरी सहूलतों की यकीन दहानी, प्रोफेशनल सर्विस। हेरा ट्रैवल किसी भी रिटर्न प्राइस को बीट करेंगे। 416-255-5566 हेरा ट्रैवल।
All Debt Solutions and Consulting Services 416-671-0577. Financial problems? Stop worrying and start living debt-free life. Visit today to your convenient location. Toronto, Scarborough, Richmond Hills and Mississauga. Call now 416-671-0577. Live a happy debt-free life. All Debt Solutions and Consulting Services.
जी साहब कर, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज़। 6:13:41 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और साहब इस वक्त भी 29 डिग्रीज टेम्परेचर है। अब मैं आपको ले चलूँगा साहब इतने गर्मा गर्म टेम्परेचर में, करण जी से बातचीत करेंगे और करण जी बताएंगे हमको कि रियल स्टेट की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या अच्छी डील्स आई हुई है। करण जी वेलकम टू रेडियो साजो आवाज़, कैसे हो सर?
बहुत अच्छा सर, आप कैसे हैं? सभी लिसनर्स लगता है कि यू नो वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, समर आ चुकी है,
वेदर को एंजॉय कर रहे हैं,
राइट? क्योंकि वी वेट फॉर इट फॉर लॉन्ग, राइट? हम कहते हैं कि समर आए, अब आ चुकी है समर।
यू गॉट इट।
वो कहते हैं ना, वो गाना है सावन की रुत कब आएगी, सो अब ये उसी की तरह की समर की रुत कब आएगी। वैसा ही वेट है इसका भी। मजू भाई इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे पास न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है हमारा शेलबर्न के अंदर है और शेलबर्न के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत हॉट है। हमें समझने की जरूरत है कि शेलबर्न लोकेटेड कहाँ पर है। शेलबर्न जो है मिसिसागा से आप हाईवे 10 लेंगे तो अगला आता है आपका कैलेडन, और कैलेडन के बाद आता है ऑरेंजविल। ऑरेंजविल के बिल्कुल साथ ही सिटी लगती है शेलबर्न। इसके बारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हाउसेस हैं बहुत लो प्राइस में मिल रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जितने भी लिसनर्स ने मिसेस आगा से बाहर निकल कर मिल्टन में घर लिए थे या थोड़ा सा आगे जाके लिए थे, उन्होंने पैसे बनाए क्योंकि वो शहर से थोड़ा सा आगे गए क्योंकि वहां पर कीमतें घट थी। ऐसे ही शेलबर्न के अंदर कीमत बहुत घट है। अगर आज आप डिटेच घर लेना चाहते हैं तो प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डर 1.2-1.3 मिलियन से घर मिल रहा है शहर के बीच में। शहर से 30-35 मिनट की दूरी पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यही घर स्टार्टिंग फ्रॉम $5.5 लाख $550,000 के अंदर आपको फुली डिटैच हाउस विद रवीन लॉट वॉकआउट बेसमेंट आपको मिल सकता है। ये ना बिलीव होने वाली प्राइस है क्योंकि ऐसी प्राइसेस एग्जिस्ट नहीं करती। हम शहर के अंदर भी घर ले सकते हैं बट वही है कि अगर हम 1.2-1.3 की मॉर्गेज लेंगे तो उसको उतारने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम 30-35 मिनट की दूरी पर ये प्रोजेक्ट खरीदने के लिए राजी हैं तो इससे बेहतर प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी ना चुकिएगा क्योंकि फ्री होल्ड टाउन हाउस या फिर सेमी डिटैच आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल सकते हैं। फेज वन का प्रोजेक्ट है, ये नहीं है फेज टू फेज थ्री, फेज वन का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो घर है आपको बहुत कम कीमत के अंदर मिलेंगे, फेज टू में लाजमी ये प्राइसेस बढ़ जाएंगी। 2020 एंड या 2021 में आपको ये प्रोजेक्ट आपके आपको घर की चाबी मिल सकती है। और सबसे सोने पे सुहागा ये है, चेरी ऑन द केक, कि आपको डिपॉजिट स्ट्रक्चर सिर्फ 10% दिया जा रहा है। 10% डिपॉजिट स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप टाउन हाउस हमसे बुक करते हैं जो कि स्टार्ट होता है $4,15,000 से, तो आपको $5,000 साइनिंग पे देना है और फिर बाकी का जो आपको डिपॉजिट देना है 2%, 2.5%, 1% वो 6 महीने में देना है। तो छोटी छोटी आसान किस्तों के अंदर आप एक घर के मालिक बन सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। 9 फुट की सीलिंग, ग्रेनाइट काउंटरटॉप बिल्कुल मिलेंगे और आपको बढ़िया इलाके के अंदर सस्ता घर मिलेगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, कल और परसों 2 दिन हम वहां पर हैं। लिमिटेड इन्वेंटरी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम पहले से करते आ रहे हैं, लास्ट फेज में अपने ये प्रोजेक्ट फेज वन का प्रोजेक्ट है। आप जसप्रीत सिंह को कॉल कर सकते हैं एंड द नंबर टू कॉल इज 905-782-3700 905-782-3700। एक बार फिर, जसप्रीत सिंह फ्रॉम होम लाइफ G1 Reality 905-782-3700 या फिर 905-782-3700।
राम जसप्रीत सिंह को आप फोन कर लें, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और नॉट टू फार फ्रॉम मिसिसागा, ब्रैम्पटन वगैरह से बहुत फार नहीं है ये। जसप्रीत सिंह का फोन नंबर नोट कर लें, 905-782-3700 जसप्रीत सिंह का फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर।
देखिए माजी भाई, जब जिंदगी ने ख़त्म होना है वो तो एक वक्त मुकर्रर है। आपको पता है इस हफ्ते में वी हार्डली एस्केप फ्रॉम जमीन की तबाही से, डू यू नो दैट?
वो कैसे
हुआ? ये है कि एक एस्ट्रॉइड जो है ना वो ज़मीन के पास से गुजरा है और यानी ज़मीन और चांद के दरमियान जितना फासला है इसका 1/5 फासले से, यानी बिल्कुल हमारे मदार के करीब से गुजर गया है। और ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको किया है। बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ ये गुजरा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और इसका एस्ट्रॉइड का नाम है 2019 ओके, इसका नाम था। और वो कहते हैं कि दिस एस्ट्रॉइड वाजंट वन दैट साइंटिस्ट हैड बीन ट्रैकिंग, यानी साइंटिस्ट
फ्रॉम नोवेयर इट केम।
इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर और अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। मैं कोट ऑन कोट्स में साइंस के लिहाज करती हूँ, द एस्ट्रॉइड वाजंट वन दैट साइंटिस्ट हैड बीन ट्रैकिंग एंड इट हैज सीमिंगली अपीयर्ड फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर। ये ऑस्ट्रेलियन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया। वाशिंगटन पोस्ट ने इसको कवर किया है। नासा के डाटे के मुताबिक ये तकरीबन 57 से 130 मीटर वाइड था, 57 to 130 meters। वो कहते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब डायनासोर्स हुआ करते थे तो डायनासोर्स की तबाही का जो बायस बना था एक एस्ट्रॉइड ही था जो गिरा था और तबाही का बायस मिला था। वो तकरीबन 1 meter के करीब उसकी चौड़ाई थी। ये एस्ट्रॉइड केम फ्रॉम नोवेयर, इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। जैसे मैंने जिक्र जिक्र कर रही हूँ कि 57 से लेके 130 मीटर वाइड था और यानी 187 से 427 फीट के मुताबिक इतनी तेज़ी से गुजरा है। इसकी रफ्तार 73,000 किलोमीटर यानी 4500 मील की रफ्तार थी और इसका फासला जो हमारे और इस एस्ट्रॉइड के दरमियान फासला था जितना चांद का और ज़मीन का फासला है इसका 1/5 था और बस ये गुज़र गया हमारे पास से। शायद दुनिया की ज़िंदगी अभी बाकी थी। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं। अब ये नज़रों से क्यों उजल रहा? पहली बात तो इसका साइज़ बहुत कम था, बहुत छोटा साइज था और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए वो कहते हैं इट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर और कोट एंड कोट्स में साइंटिस्ट कहता है कि बट इट्स नोवेयर नियर अस बिग एज वंस केपेबल ऑफ कॉजिंग एन इवेंट लाइक डायनासोर्स एक्सटिंक्शन मोर देन 90% ऑफ दैट एस्ट्रॉइड। ठीक है, यानी इसकी रफ्तार ही इतनी तेज थी कि वही बहुत बड़ा मामला क्रिएट कर सकती थी।
हो गया था मामला सारा,
जब वक्त लिखा तभी पूरा होना, एस्ट्रॉइड पर गुजरेंगे। लीजिए साहब, एक आप तैयार रहिएगा, हमने अभी थोड़ी देर में अमेरिका की तरफ जाना है। अमेरिका से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब किससे, अजीम मियां साहब से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ फ़ख़्र आलम के बारे में, आप तमाम जानते ही हैं। फ़ख़्र आलम जो हैं, थोड़ी सी इस हिस्ट्री की तरफ निकलेंगे, फिर फ़ख़्र आलम का एक गीत भी आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने महंगाई से मुतल्लिक एक गीत गाया था, ये जब इससे पहली गवर्नमेंट थी, नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस दौर की बात है। फ़ख़्र आलम की जो बीवी हैं उन्हें मल्टी नेशनल कंपनी की CEO नामजद किया, ये याद रखिएगा, ये फ़ख़्र आलम की तीसरी बीवी थी। परवाज मिशन के तहत इन्होंने दुनिया का चक्कर भी लगवाया था और पाकिस्तान टेलीविजन के फनकार भी हैं, मेज़बान भी हैं। फ़ख़्र आलम इनकी एलिया का नाम जो इस वक्त की बीवी हैं दवानिया फाडी इनकी बीवी का नाम है और बर्कशायर हेथवे की जो कंपनी ये रियल स्टेट से मुतल्लिक करती है उसकी CEO इसको बनाया गया है। और बल्कि फ़ख़्र आलम ने एक ट्वीट किया है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई वाइफ, शी सेट्स अ बार सो हाई फॉर मी फ्राम बींग फीचर्ड इन। कहते हैं कि जो फोबिस है उसने कई दफ़ा इनकी बीवी जो दवानिया फाडी है उसको कई दफ़ा फोबिस ने भी कवर किया है और फ़ख़्र आलम ने यही कहा है कि बींग फीचर्ड इन फोबिस मल्टीपल टाइम्स इज़ बींग मेड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन मिडल ईस्ट रिप्रजेंट द वॉरन बफे लेगेसी, हर स्टोरी इज सुपर, आई एम सो अंडर प्रेशर टू बी हर लीग, आई एम ट्रूली अ लकी। यानी उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरे लिए जो एक चीज़ सेट की है वो बहुत बार ऊंची सेट कर दी है। फॉरबेस में उनकी बीवी की मुतद्दद बार कामयाबी की स्टोरीज शेयर भी हुई हैं और वॉरेन बफे की बर्कशायर हेथवे कंपनी में CEO मुकर्रर किया। बिग डील साहब, बिग डील। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो उनकी बीवी ने कहा, थैंक यू हनी फॉर द कंटिन्यूस लव एंड सपोर्ट, यू आर माई पिलर। दवानिया जो फाडी हैं ये फ़ख़्र आलम की तीसरी बीवी हैं और फ़ख़्र आलम ने अपने करियर का आगाज़, इन्होंने पूरी तालीम अमेरिका में हासिल की थी और अमेरिका में रैप सिंगर के तौर पे इन्होंने काम करना शुरू किया, गुलूकारी से इन्होंने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद उन्होंने परवाज मिशन के तहत यानी अपने जहाज़ में दुनिया का चक्कर भी लगाया और उसके बाद आपको पता ही है कि पाकिस्तान के टेलीविज़न प्रोग्राम्स में काम भी करते हैं। अब फ़ख़्र आलम कौन है, इसका जब मैं जिक्र करती हूँ तो फ़ख़्र आलम अकलीम अख्तर रानी के बारे में आप तमाम लोग जानते होंगे। अकलीम अख्तर रानी, अब देखिए साहब ये जितने बड़े लोग हैं इनकी टाइज कहाँ मिलती हैं, और मैं बल्कि जब आज इस डिटेल को आपके लिए तैयार कर रही थी तो आई वो सरप्राइज कि इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने कितने लोगों को कितना कुछ दिया। अदनान समी की बात करते हैं, अदनान समी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट, आपको पता है उनके वालिद साहब को किन पोजीशंस के ऊपर रखा था और पाकिस्तान की इंतहाई सेंसिटिव पोजीशंस के ऊपर रखा था, एज एन एम्बेसडर डिफरेंट कंट्रीज में रहे। अदनान समी ने अपनी तालीम उसी दौरान पे मुकम्मल की, फिर 80s में पाकिस्तान आ जाते हैं, उसके बाद फिर इनके वालिद और वालदा फिर इंडिया चले जाते हैं, वहाँ इनके वालिद और वालदा का इंतकाल हो जाता है। बहरहाल जनरल रानी से हम मामले को शुरू करते हैं। अकलीम अख्तर इनका नाम था, जनरल रानी के नाम से ये जानी जाती थी। अकलीम अख्तर 1960s की बात है, 1960 में अकलीम अख्तर, ये एक आर्मी और एक पुलिस ऑफिसर से इनकी शादी हुई थी और उसके बाद फिर ज़ाहिर है पुलिस ऑफिसर की जो पोजीशन थी उसके हवाले से आर्मी वालों से और जो जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस हैं उन लोगों से इनकी मुलाकात होने लगी। फिर इन्होंने शोबिज़ का पोर्टल अपना लिया और जनरल याहिया ख़ान के ज़माने में इन्होंने फिर ज़ाहिर जनरल रानी के नाम से पहचानी जाने लगी। दो नाम हैं, तारिक मेराज और नसीम तारिक, गो के इनका फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं था। अकलीम अख्तर गुजरात से इनका ताल्लुक था, गुजरात पंजाब से, और एक पुलिस ऑफिसर से इनकी शादी थी। अल्टीमेटली 1960 में अकलीम अख्तर की शादी जो थी वो डाइवोर्स हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। अकलीम अख्तर के 6 बच्चे थे और उसके बाद ये फिर रावलपिंडी के एक अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गई थी। और इन्होंने, अकलीम अख्तर इनका ओरिजिनल नाम था, इन्होंने अपना नाम रानी रख लिया था और पिंडी में इन्होंने एक सोशल क्लब बना लिया था। सोशल क्लब में मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो और इनके मिलने जुलने वाले बड़ी पोस्ट के जो लोग थे वो इनको विज़िट किया करते थे। 1967 में अकलीम अख्तर या रानी जिन्होंने अपना नाम बना लिया था, 67 इनकी मुलाकात जनरल याहिया ख़ान से होती है जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के। आपको बताइए कि जनरल याहिया ख़ान जो थे ड्रिंक भी करते थे और ख़वातीन के साथ भी इनके ताल्लुकात होते थे। अकलीम अख्तर और जनरल याहिया ख़ान अच्छे दोस्त बन गए थे, बेहतरीन फ्रेंड्स थे और जनरल रानी या अकलीम अख्तर ने बहुत से और लड़कियों से भी जनरल याहिया ख़ान की मुलाकात कराई। इनकी दोस्ती एक अरसे तक रही, बल्कि पाकिस्तान की प्रेस ने इनकी दोस्ती को बहुत कवर किया। वो कहते हैं कि जनरल अयूब ख़ान जो थी उनको उनके अगेंस्ट जब मूवमेंट होती है 68-69 में और उसके बाद फिर जनरल याहिया ख़ान आ जाते हैं 1969 में। फिर आपको पता है भुट्टो साहब भी दरमियान में आते हैं मगर याहिया ख़ान जो थे उनका ताल्लुक जो फिर रहता है। अकलीम अख्तर जो थी बड़ी करीबी दोस्त थी याहिया ख़ान की, उनकी कुर्बत की वजह से कहते हैं कि जनरल रानी की कमांड चलती थी, उनकी बात चला करती होती थी उस ज़माने में। और भुट्टो साहब भी वहाँ पर हुआ करते थे, भुट्टो साहब ऑफकोर्स याहिया ख़ान के इतने क्लोज नहीं थे। कहते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने भी अकलीम अख्तर को जब ये उनके अगेंस्ट हुए याहिया ख़ान के तो उन्होंने भी जनरल रानी का बल्कि तस्करा किया। और फिर जनरल रानी जो थी वो जब याहिया ख़ान को थ्रू आउट कर दिया गया था 71 की वॉर में, आपको पता ही है कि मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी। मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, याहिया ख़ान के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आ जाते हैं तो जनरल रानी जो थी उनका नात का पानी बंद कर दिया गया था। 6 बच्चे हम पहले ज़िक्र कर चुके थे, उनके 6 बच्चे थे और ये हमूदुर्रहमान कमीशन का भी इसमें ज़िक्र आता है। 1977 में जब जनरल ज़ियाउल हक पावर में आते हैं, अब जनरल रानी जो थी ना वो 71 के बाद भुट्टो साहब का दौर आ जाता है, फिर भुट्टो साहब के बाद जनरल ज़ियाउल हक आ जाते हैं। 1977 तक जनरल रानी जो थी वो बिल्कुल अंडरग्राउंड चली गई हुई थी, मगर 1977 में जब ज़ियाउल हक पावर में आ जाते हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर ख़त्म हो जाता है, अब साहब ग्रेजुअली जो वो डिसअपियर हो गई थी। 1981 में जनरल याहिया की भी डेथ हो जाती है। अब जब जनरल याहिया की डेथ होती है तो जनरल रानी को एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत कवर किया, वो बल्कि कोट एंड कोट्स में मैं जिक्र करना चाहती हूँ, अगेन बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ द प्रेस ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द ड्रग स्मगलिंग केस 1980 में, बट लाइक नो अदर चार्जेस प्रूवन, साबित कुछ भी नहीं हो सका था, फारिग हो गई थी। 1980 में से लेके सन 2002 तक जनरल रानी ने बड़ी क्वाइट ज़िंदगी गुजारी, बल्कि जब कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक आ जाते हैं ना, और उस वक्त
تو اقلیم اختر کا ڈیفیکلٹ ٹائم یحییٰ خان جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل رانی کا ڈیفیکلٹ ٹائم کسی حد تک کم ہو گیا تھا, مگر پھر 2002 تک 1980 لے کے 2002 تک جنرل رانی یا اقلیم اختر انہوں نے بالکل انڈر گراؤنڈ ٹائم گزارا, بڑی کوائٹلی اپنی زندگی گزاری. 2002 میں ان کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک, جیسے میں نے ذکر کیا کہ جنرل رانی کے 6 بچے تھے, 6 بچوں میں سے ان کی ایک بیٹی کا نام عروسا عالم. عروسا عالم اقلیم اختر یعنی جنرل رانی کی بیٹی تھی, جیسا ہم کہہ چکے ہیں ان کے 6 بچے تھے, اور عروسا عالم کی بھی شادی نہ پولیس آفیسر کے ساتھ ہو گئی, نہیں اس کی عروسا عالم کی شادی جو ہے نا ایک سول آفیسر کے ساتھ ہوتی ہے, پولیس سول آفیسر کے ساتھ, اور اس کے بعد اس نے جرنلزم پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں انہوں نے بلکہ کام بھی کیا. 2000 میں نا سندر 2000 کے درمیان کی بات ہے کہ ہندوستان کے میڈیا نے عروسا عالم کو بڑا کور دیا. عروسا عالم یہ جو فخر عالم کی والدہ ہیں, عروسا عالم پاکستان کے ایک انگریزی اخبار کے ساتھ جرنلسٹ بھی رہیں, تو یہ نا کیپٹن امریندر سنگھ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ ہو گئے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس نے کیپٹن امریندر سنگھ سے شادی کر لی ہے, بہرحال بہت سارے ڈینائل چلتے رہے. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, کیپٹن امریندر سنگھ صرف میرے اچھے دوست ہیں, بلکہ یہ تو ایک زمانے میں موو بھی کر گئی تھی انڈیا میں. انڈیا کے اخبار یہ کہتے تھے کہ کیپٹن امریندر سنگھ جو ہیں عروسا عالم کے ساتھ ہیں, عروسا عالم ISI کی ایجنٹ ہیں. عروسا عالم اس سے گو کے ڈینائی کرتی تھی. عروسا عالم ابھی بھی حیات ہیں, واٹ اے پرفیکٹ پرسنالٹی, ویری گریسفل لیڈی, بٹ یو نو واٹ, بلکہ انڈیا میں ان کے اگینسٹ ایک موومنٹ چلی تھی عروسا عالم کی, جس میں ہندوستان کے جو علماء ہیں انہوں نے فتویٰ بھی لگایا تھا کہ ایک مسلمان عورت نان مسلم کی بیوی کیسے بن سکتی ہے, بلکہ اس کو سنسار کرنے کا بھی کہا گیا تھا. عروسا عالم والدہ ہیں فخر عالم کی. فخر عالم کی تربیت یونائٹڈ سٹیٹس میں ہوئی, امریکہ میں انہوں نے پڑھا لکھا, اور ارلی 1990 میں 78 میں میرا خیال ہے یہ پیدا ہوئے تھے, ارلی 1990 میں انہوں نے اپنی ایک اردو البم بنائی تھی میوزک کی. اس البم کو تو اتنی خیر پذیرائی نہیں ملی, اور اس کے بعد پاکستان کے ٹیلی ویژنس کو یہ ہوسٹ کرتے رہے, ان کو بڑی پذیرائی ملی. انہوں نے بہت ساری فلموں میں بھی کام کیا. ایک فلم تھی ویری گڈ دنیا ویری بیڈ لوگ, 1998 میں یہ فلم بنائی تھی, فلاپ ہو گئی. ایک اور فلم بھی انہوں نے 1990 میں ہی بنائی تھی, نو پیسہ نو پرابلم, 2001 میں بنائی تھی, وہ فلم بھی فلاپ ہو گئی. تو گانے کا ان کا سسٹم بھی فلاپ ہوا, فلم کا سسٹم بھی فلاپ ہوا. اس کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن کے پروگرامس کو ہوسٹ کیا, ٹیلی ویژن کے پروگرام ان کے بڑے سکسیزفل گئے, بلکہ پرویز مشرف کے دور میں سن 2008 سے لے کے 2012 تک فخر عالم جو تھے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشرف رجیم میں اگر کوئی پریزیڈنسی میں پروگرام ہوا کرتا تھا تو فخر عالم واز پارٹ اینڈ پارسل ٹو دیٹ پروگرام, ہی واز سو کلوز ٹو دیم. فخر عالم نے 2 شادیاں اس سے پہلے کی تھیں, یعنی یہ خاندان کی روٹین چلی آ رہی ہے. 2 شادیاں, پہلی میرج 1998 میں کی تھی جب انہوں نے اپنی فلم بنائی تھی, دوسری فلم میں دوسری 1998-99 میں فرسٹ میرج کی تھی. یہ نادیہ نامی ایک لڑکی سے شادی کی تھی, 2 سال کے بعد ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی. سیکنڈ میرج انہوں نے ایک لڑکی ہنا معراج کے ساتھ, ہنا معراج کیونکہ یہ ٹیلی ویژن میں ہوسٹنگ کا کام کرتے تھے, فلموں میں تھے, تو ہنا معراج کے جو والدین تھے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ تھے, اس سے بھی پھر ڈائیورس ہو گئی تھی. دین ہی میرڈ تھرڈ میرج, تیسری میرج یہ جو دوانیہ فاڈی کے ساتھ انہوں نے کی ہے, یہ عرب لڑکی ہے اینڈ مڈل ایسٹ میں ہی ہے, اور جیسے اب ہی از ویری ہیپی کہ دوانیہ عالم جو ہے یہ جو ہمارا کیا ہے وارن بفے, اس کی کمپنی کی ایک برانچ ہے جو مڈل ایسٹ کی طرف ہے, ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہے, اس کی سی او بن گئی ہیں. یہ خاندان اب ہے کیا, جنرل رانی کا میں نے ذکر کیا, اس کا مطلب ہے فخر عالم جنرل, فخر عالم جو ہیں ان کی نانی کا نام جنرل رانی تھا. جنرل رانی کی ایک بہن کی بیٹی تھی, جنرل رانی کی بہن کی بیٹی, یعنی جنرل رانی ان کی خالہ لگتی تھی, عدنان سمیع ان کے بیٹے ہیں. اب ماجد بھائی, جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا نا جس چیز کو پڑھنے کا, وہ مجھے اس چیز کا دکھ ہوا کہ نورین سمیع خان نورین سمی خان جو تھی یہ جنرل رانی کی بھانجی تھی, ٹھیک ہے. نورین سمی خان کی شادی ہوتی ہے ارشد سمی خان کی. اب امیجن کیجئے گا کہ جنرل رانی نے بھی اپنا رول پلے کیا اراؤنڈ دی پولیٹیکل پارٹیز, اراؤنڈ دی مین جو کریم آف پاکستان تھی ان کے ساتھ. نورین سمی خان جنرل رانی کی سکی بھانجی, بہن کی بیٹی, اس کی شادی ہوتی ہے ارشد سمی کے ساتھ. اب ارشد سمی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں, ارشد سمی بہترین انہوں نے پوزیشن انجوائے کی. جو نورین رہے یہ پاکستان میں, کیش انہوں نے پاکستان کو کیا, اس کے بعد برٹش نیشنلٹی انہوں نے حاصل کر لی. نورین سمی خان نے ارشد سمی سے شادی کی, جنہوں نے ارشد سمی پہلے پاکستان ایئر فورس میں انہوں نے سروسز دی. اس کے بعد 1965 سے 71 کی وار میں, بلکہ انڈیا کے اگینسٹ انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا, ایئر فورس میں تھے. اس کے بعد ان کو پاکستانی, تین پاکستانی پریزیڈنٹ کے ساتھ اے ڈی سی, وہی بات ہے نا, پاور تھی, پلس تھی, تین پاکستانی پریزیڈنٹس کے یہ اے ڈی سی رہے. ارشد سمی کیونکہ ہی واز ویری کلوز ٹو دیز پریزیڈنٹس, ہی سروڈ ایز امبیسڈر آف 14 دنیا کے 14 مختلف ممالک کے امبیسڈر بھی رہے. 1970 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ حاصل کی, 1970 سے لے کے 1990 تک کی بات ہے, 1990 میں پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. اور یہ حامد میر بتا رہے ہیں, 1990 میں انہوں نے جب ریٹائرمنٹ لی نا, تو ریٹائرمنٹ کیوں لی تھی کہ ہی واز سرونگ ایز امبیسڈر ٹو ڈفرنٹ کنٹریز ان پاکستان, اے ڈی سی تھے پریزیڈنٹس کے. تو ریٹائرمنٹ لینے کی وجہ یہ تھی کہ 1989 میں ہی واز ڈائیگنوزڈ ود دا کینسر. ارشد سمی خان, ہی واز ڈائیگنوزڈ ود دا کینسر, اور ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ان کے علاج کا خرچہ سارا پاکستان کی گورنمنٹ نے دیا. آپ کا دل خون کے آنسر ہو جائے گا, یعنی اے مین سروڈ ان پاکستان ایئر فورس, دا مین سروڈ ان سو مینی کنٹریز, اراؤنڈ 16-17 کنٹریز میں ایز این امبیسڈر ٹو پاکستان رہے, تین پریزیڈنٹ کے اے ڈی سی رہے. اس کے بعد 89 میں جب ان کو کینسر ہوتا ہے تو ان کے کینسر کے علاج کے لیے سارا کا سارا پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ نے دیا تھا, ٹیکس پیئرس کی منی تھی. اس کے بعد جناب ارشد سمی اور نورین یعنی جنرل رانی کی بھانجی دونوں, حالانکہ جو اس کے پاس نورین کے پاس انگلینڈ کی سٹیزن شپ تھی, بٹ بوتھ آف دیم جب امبیسڈر کے طور پہ رہے تو عدنان سمی کیونکہ ان کا بیٹا تھا, اس کی تعلیم بھی انگلینڈ میں ہوئی اور یہاں وہاں پہ اس کی تعلیم ہوئی. تو یہ جناب نورین سمی اور جو ارشد سمی ہے, 2009 میں دے موو ٹو انڈیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے انڈیا کی سٹیزن شپ لے لی. عدنان سمی بھی انہی کی پروڈکٹ ہے, ہی از بین لیونگ ان 1980 میں یہ پاکستان میں رہے انہوں نے پہلا.
اب دیکھیں
جہاں میں لوگوں کی زیادتی کر رہی ہوں وہاں میں اپنی اور آپ کی بھی زیادتی کا ذکر کرتی ہوں, ہم پاکستانیوں کی زیادتی. جو چیز میرے اور آپ سے تعلق رکھتی ہے نا, ہماری ذاتی ہے, ہمیں اس میں 100 خامیاں نظر آتی ہیں, مگر اگر وہی چیز کوئی اور پروڈیوس کر دیتا ہے تو پھر ہمیں اس میں بڑے گن نظر آنے لگ جاتے ہیں. جیسے قتیل شفاہی کے جتنے گانے تھے, انہوں نے اپنی غزلیں, وہ سارے گانے پاکستان میں گائے جا چکے ہیں, اس کے بعد ان غزلوں کو انہوں نے دوبارہ بیچ دیا انڈیا میں, آج وہ سب کو غزلیں اچھی لگتی ہیں. تو عدنان سمی نے پہلی جو ایک البم اپنی ریلیز تھی وہ تھی کبھی تو نظر ملاؤ, تو پاکستان میں جب ریلیز کی نا تو اس کو پروموشن ہی نہیں ملی, کیونکہ ہم پاکستانی انڈیا کے گانے سنتے تھے, انڈیا کے فنکاروں کو پسند کرتے تھے, تو یہ فلاپ ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ انڈیا چلے جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. انہوں نے بھی پہلی شادی زیبا بختیار کے ساتھ کی تھی, ایک فلم بنائی, دوسری فلم بنائی, ان کی فلمیں بھی فلاپ ہو گئیں, کبھی تو نظر ملاؤ بھی فلاپ ہو گئی. دین ہی وینٹ ٹو انڈیا, وانس ہی وینٹ ٹو دا انڈیا آشا بھوسلے کے ساتھ مل کے انہوں نے ری ریلیز کیا کبھی تو نظر ملاؤ کو. اس کے بعد وہ ہٹ ہے, اس نے مطلب اسکائی راکٹ کیا, اور اٹس ویری سیڈ, کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 1997-98 عدنان سمی نے میوزک کمپوز کیا. اس البم کا نام تھا موسم کے نام سے, انڈین سنگر آشا بھوسلے نے اس میں گایا. اور وہ کہتے ہیں مین وائل ان کی جو شادی تھی زیبا بختیار کے ساتھ, ان کی فلم میں یہ گانا بھی گایا گیا تھا, وہ بھی ٹوٹ گئی. اور مگر The worst thing what I was going through is ke jab Adnan Sami ki kabhi to nazar milao Pakistan mein banayi gayi thi to it was a total flop.
Zeba Bukhtiar bhi wo Yahya Bukhtiar ki beti thi. Yahya Bukhtiar
सारे मैंने बताया ना कि
अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान
एग्जैक्टली और अगर आप ये चीजें देखते हैं ना यही तो मैं आपको दुख की बात जिक्र कर रही हूँ कि हमारी हिस्ट्री क्या है
अब ये देख लेना कि यू आर सो क्लोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मगर आप और आपके खानदान जो है वो इंडिया से उनका ताल्लुक कितना ज्यादा गहरा ताल्लुक है तो उस वक्त आपका इन्फ्लुएंस भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पे कितना है आप ही ने अभी कहा कि जनरल रानी का बहुत इन्फ्लुएंस था जनरल याया पे तो वो उसकी वजह से देखेंगे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा होगा
चलें जी आपको मैं फखर आलम का एक गीत सुनाती हूँ ये गीत इन्होंने रिलीज किया था ये प्रीवियस गवर्नमेंट का दौर है जब महंगाई का बड़ा रोना रोया जा रहा था और मगर साहब महंगाई इज नॉट ड्यू टू समथिंग इट्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड इट इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम समाज फरमाइए कि अगर ये मेरा साथ दे जाए तो
जी माजी भाई आप फिर भी जिंदा पाकिस्तानी
जरूर चलेगा ये गीत एक स्पॉन्सर का मैं पैगाम दे देती हूँ जब तक ये गीत चलता है तब तक इलीट कैनेडियन अकेडमी
ढूंढे और मैं आप काम सीख भी सकते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ हेयर डिजाइनिंग का कॉस्मेटोलॉजी का मेकअप कोर्सेज न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लानिंग सलोन मैनेजमेंट बेसिक कोर्सेज ऑफ मेहंदी ये हम बात कर रहे हैं एलीट कैनेडियन एकेडमी सलोन एंड स्पा पे आप मेकअप भी कराइए और मेकअप का जो है सर्टिफिकेट भी ले लीजिए वहाँ से थोड़ा सा आपने कोर्स करना होगा वेरी शॉर्ट कोर्सेज तो एलीट कैनेडियन एकेडमी सलोन एंड स्पा आपको मिलेगा कहाँ पर 2901 मार्कम रोड यूनिट नंबर 12 इन स्कारब्रो और स्कारब्रो में ये मिलेगा आपको एंड फोन नंबर नोट कर लें 6477610508 इनका फोन नंबर है
और जिक्र हो जाए हेयर मैक्स का
हेयर मैक्स की बात करते चलें तो साहब हेयर मैक्स दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं 861 जेन स्ट्रीट जेन एंड एग्रीटन के इलाके में जहां जेन पार्क प्लाजा है पर उसी में है इनका लोकेशन और दूसरी लोकेशन जो है एरनडेल स्टेशन एंड डंडास के कॉर्नर पर जहां वेस्टडेल मॉल है बस वेस्टडेल मॉल के अंदर इनकी एक और लोकेशन है दो लोकेशन से सर्व करते हैं इनका कहना है कि वी डील इन वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स फॉर हियरिंग एड्स एंड अदर असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस अगर आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो रही हो तो भाई आप एक दफा फ्री नो ऑब्लिगेशन कंप्लीट हियरिंग टेस्ट आप इनके पास जाके ले सकते हैं देयर इज नो चार्ज फॉर इट आप जाए इनके पास जाके कंप्लीट हियरिंग टेस्ट ले हेयर मैक्स अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन फोन नंबर नोट कर लें 416-792-8792 इनका फोन नंबर है और साहब कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस की बात करते चलूँ कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस ब्रांड न्यू स्टोर है और सारा का सारा सामान ब्रांड न्यू है अगर आपने अपने घर में डाइनिंग रूम ड्राइंग रूम और इसके साथ साथ कहीं का भी किसी भी कमरे का सामान चाहिए हो आपको तो आप ये सामान जो है यहाँ से खरीद सकते हैं और अगर आपने अप्लायंसेस चेंज करने हो अपने तो भाई सारे अप्लायंसेस इनका ब्रांड न्यू अप्लायंसेस आपको मिल सकते हैं ब्रांड न्यू अप्लायंसेस भी लीजिए आप फर्नीचर भी लीजिए कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस पे आप पहुंच सकते हैं एड्रेस आप नोट कर लें 547 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट कैनेडी और स्टील्स का इंटरसेक्शन बनता है इन ब्रैम्पटन। फोन नंबर नोट कर लें 905-244-4663 जनाब, कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस का फोन नंबर है। बात कर चलूं मैं अब भाई, ईद उल अज़हा की आमद आमद है और मुस्लिम वेलफेयर सेंटर एज ऑलवेज उनका कहना है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू अल्लाह सुब्हान व तआला। और अगर आपने टोरंटो से बाहर या कनाडा से बाहर आपने कुर्बानी करवानी हो ईद उल अज़हा के जानवर की, तो पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, यमन, श्रीलंका वगैरह में, या अगर आप अपने टोरंटो के इलाके में करवा रहे हैं या टोरंटो से बाहर करवा रहे हैं, तो भाई उसका तीसरा हिस्सा जो है, हमारी गुजारिश ही है आपसे कि आप तीसरा हिस्सा जो है कुर्बानी का वो आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को दें। लास्ट ईयर जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, 45,000 pounds ऑफ कुर्बानी मीट जो है इनको GTA और करीब करीब से मिला था और वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। 26,000 नीडी फैमिलीज जो हैं वो इन पे एब्सोल्यूट डिपेंड करती हैं। तो भाई आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के से रुजू कर सकते हैं। तीन लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ये मिसिसागा में, इसके साथ साथ स्कारबरो के इलाके में और विडबी में। फ़ोन नंबर नोट कर लें इनका 416-754-8116, 416-754-8116 इनका फ़ोन नंबर है। टोरंटो से बाहर रहने वाले टोल फ्री आपको नंबर दे देता हूँ मैं, 1-866-754-3111, 866-754-3111 इनका फ़ोन नंबर है।
चलिए हो जाए फिर वो गीत,
उसमें भी हम तुम कोरस में आओगे हमारे साथ। हाँ। तो हमने जो है ना कोरस उसके बाद भी करना, तो फिर इसको साइड पे कर देते हैं। राय जनाब, ना बिजली ना गैस ना मिले यहाँ पे पानी, परेशानियां है रोज, फिर भी जिंदा पाकिस्तानी।
खड्डे मड्डे टूटे रोड, इस मुल्क की कहानी, यहाँ गंद वहाँ गंद, फिर भी चले पाकिस्तानी।
मुश्किलात है बड़ी,
कोई गल नहीं, सत्रों की घड़ी,
कोई गल नहीं,
सबको अपनी पड़ी,
कोई गल नहीं,
ये गवर्नमेंट, कोई गल नहीं,
चल लुट पाकिस्तानी, शाबाश पाकिस्तानी, आगे बढ़ पाकिस्तानी, हिम्मत कर पाकिस्तानी, चल लुट पाकिस्तानी, शाबाश पाकिस्तानी, आगे बढ़ पाकिस्तानी, हिम्मत कर पाकिस्तानी।
स्कूल और कॉलेज, बिल्डिंग की रिबिल्डिंग,
जॉब लेने गया, सबने मुझको टेंशन दी,
से ऊपर
और ऊपर से नीचे, सबने दिखाए मुझे बाग बगीचे,
सफारिश सफारिश, रिश्वत सफारिश, सबने मुझसे की कैश की गुजारिश,
सब साले चोर हैं, बड़े हराम खोर हैं,
करप्शन का दौर है, अवाम कमजोर है,
पाकिस्तानी, शाबाश पाकिस्तानी, आगे बढ़ पाकिस्तानी, हिम्मत कर पाकिस्तानी, चल लुट पाकिस्तानी, शाबाश पाकिस्तानी, आगे बढ़ पाकिस्तानी, हिम्मत कर पाकिस्तानी।
ओए गटर का पानी, जिंदाबाद पाकिस्तानी, रेटिंग की दौड़, जिंदाबाद पाकिस्तानी,
चोर
जिंदाबाद पाकिस्तानी, चोर हुक्मरान
जिंदाबाद पाकिस्तानी,
नेटवर्क है स्लो
जिंदाबाद पाकिस्तानी,
लोड शेडिंग की मार जिंदाबाद पाकिस्तानी,
स्कूल की फीस
जिंदाबाद पाकिस्तानी,
भाई बाइक दे दे,
अरे चीतो पाकिस्तानी,
चल लुट पाकिस्तानी, शाबाश पाकिस्तानी, आगे बढ़ पाकिस्तानी, हिम्मत कर पाकिस्तानी, चल लुट पाकिस्तानी, शाबाश पाकिस्तानी, आगे बढ़ पाकिस्तानी, हिम्मत कर पाकिस्तानी।
ये कैसी जमहूरियत है, ना बिजली है ना पानी है, तालीम और तरक्की सिर्फ फाइलों की कहानी है, हॉस्पिटल के फर्श पे आवाम को मौत आनी है, पर सारे लीडरों को बाहर सर्जरी करानी है, क्रेडिट पे टैक्स की रवानी है, थोड़ा सा लिहाज कर गरीब की जवानी है, अमीर और अय्याश को कितना शैतान है,
दो दो गर्लफ्रेंड लेकिन बीवी से छुपानी है।
सब ये फाखिर रैप सिंगर, इन्होंने अपनी अमेरिका से तालीम हासिल की थी, इन्होंने अपनी एक एल्बम भी रिलीज़ की थी, बट अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गया। उसके बाद दो फिल्मों में आए, दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। ऑफ़ कोर्स इज़ अ वेरी गुड होस्ट एट द टेलीविजन और दुनिया के गिरद इन्होंने चक्कर भी लगाया। जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत शुक्रिया शाजिया जी, आपने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपॉर्चुनिस्ट यानी मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग, आप इमेजिन कीजिएगा कि दिस इज़ अ फैमिली जनरल रानी से अगर ये कहानी शुरू होती है और दाएं बाएं और फ़खर आलम मस्ट बी वेरी सिंसियर टू पाकिस्तान बट नाउ ही हैज़ अ थर्ड मैरिज मिडल ईस्ट में ही फर्स्ट टू वुमेन वर फ्रॉम पाकिस्तान बट दिस थर्ड वुमेन इज़ फ्रॉम अरब नजाद औरत हैं ऑफ कोर्स वॉन बफे की एक जो रियल स्टेट की कंपनी है उसकी सीईओ इनको नामजद किया है जिसके बारे में मैं फिर अभी आपसे बात करती चली आ रही थी मगर अदनान समी की भी अगर बात की है तो अरशद खान अरशद समी खान जो अदनान समी के वालिद हैं आप इमेजिन कीजिएगा कितनी किन पोजीशंस को उन्होंने इंजॉय किया एम्बेसडर टू 16 कंट्रीज फ्रॉम पाकिस्तान तीन प्रेसिडेंट्स को उन्होंने एडीसी की सर्विसेज दी मगर एट द एंड ऑफ द डे इवन एयरफोर्स में काम किया जहाज उड़ाए इंडिया के अगेंस्ट एंड देन इन 2009 ही मूव टू इंडिया और आज आपको पता ही है अदनान समी व्हाट इट इज और दैट्स व्हाट इट इज पाकिस्तान का अलमिया ये रहा नहीं पाकिस्तान का नहीं मैं हिस्ट्री की तरफ अगर जाती हूँ आप पूरी की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें मैं बल्कि उन तीन लोगों का भी जिक्र आपके साथ करूँगी कि मुसलमानों की हिस्ट्री अगर आप उठा के देख लें तो मुसलमानों की हिस्ट्री के बीच में ट्रेटर्स कितने थे यानी कितने बागी थे कितने लोग थे जिन्होंने स्नैक इन द ग्रास या स्नैक इन द कफ का काम किया था और अपनी ही लुटिया डुबोई थी आज भी मैं मानती हूँ मगर मेरा ख्याल है कि यू नो देर मस्ट बी अ चेक एंड बैलेंस एनी वेज मुझे पता है बहुत हम आपको लेके चलेंगे अमेरिका अमेरिका से हमारे साथ शामिल होंगे जनाब अजीम मियाँ साहब हमारे साथ शामिल होंगे और अजीम मियाँ जिक्र करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का दौरा कैसे रहा इसके बारे में जिक्र करेंगे जी माजिद भाई एक
मेरा ख्याल पहले
मुझे बल्कि बहुत से लोगों ने दो तीन लोगों ने टेक्स्ट किया व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज दिस दिस वाज अ रैप सॉन्ग एंड उनकी स्पेशलाइजेशन ही रैप सॉन्ग थी और बिल्कुल साहब ये जो फ़खर आलम हैं भी आप इमेजिन कीजिएगा कि जैसे जनरल रानी यहिया खान के बाद कितने रिलीजियस थे आपके जनरल ज़ियाउल हक कितने रिलीजियस थे मगर कहते हैं जनरल रानी ने ज़िंदगी की रमक उसमें दोबारा आ गई थी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में और ये जो फ़खर आलम है ऑफ कोर्स आई डोंट डाउट ऑन एनीबॉडी मगर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही वाज वेरी क्लोज टू द प्रेसिडेंसी तमाम इवेंट्स को यही अटेंड करते थे मगर मैं जब इनकी कज़न का जिक्र करती हूँ सेकंड कज़न अदनान समी का और मैं देखती हूँ किन मरात को उन्होंने एंजॉय किया एंड वेयर ही एंडेड अप एट द मोमेंट That is a question mark. That's my thought. आप इससे agree करते हैं या नहीं करते हैं वल्ला आलम बिस्सवाब जी माजिद भाई
आरफा जी हम आपको लिए चलेंगे केडी होम्योपैथी पे और केडी होम्योपैथी के जनाब डॉक्टर कुलदीप सिंह हमारे साथ होंगे ये बता चलूँ कि ये वॉक इन होम्योपैथी की क्लिनिक है ओवर 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनके पास है और स्पेशलाइज इन ऑल एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन डिप्रेशन हो एंगजाइटी हो मेनोपॉज हो स्लीप डिस्टर्बेंसेस माइग्रेन्स हेयर लॉस वेट लॉस वेट गेन एस्मा ऑटिज्म एलर्जी इसके साथ साथ ऑथोराइटिस एक्नी एंड हाई ब्लड प्रेशर अगर इसके कोई भी बीमारी हो आपको और आप चाहते हैं कि भाई एलोपैथी की जगह आप होम्योपैथी को ट्राई करना चाहते हैं तो हम आपको नाम देते हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह इनका ऑफिस जो है इनका क्लिनिक जो है 20 मैरिटाइम बुलेवार्ड यूनिट नंबर 2 इन ब्रैम्पटन क्वीन और एयरपोर्ट के कॉर्नर पर आपको मिलेंगे इनकी वेबसाइट है kdhomeopathy.com पे डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब वेलकम टू रेडियो साजोवास कैसे हैं आप सर
हाँ जी ठीक है साजो सारे लिसनर को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल तो हाँ तो आज हम लोग जो है किडनी के बारे में बात करेंगे
जी
तो क्योंकि किडनी से जो है बहुत लोग परेशान रहते हैं किडनी की तो किडनी है यूरिनरी इन्फेक्शन है अभी हमारे पास पिछले वीक जो है लोग आए जो कि उनको करीब उनकी किडनी 25% जो है तब जो है हमने का पहले क्यों नहीं याद किया कि तो इसलिए यदि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है अर्ली जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी जो है आपको होम्योपैथी, हम बार बार कहते हैं कि होम्योपैथी से अच्छी कोई दवाई नहीं है, कमाल की दवाई है। तो आप जरूर एक बार, यदि आपको कोई बीमारी पता नहीं लग रही है, यदि जानकारी नहीं है, डायग्नोज नहीं हो पा रही है, कई बार नहीं पता लगता है, मशीनों में अच्छी नहीं आती है, जरूर हमारा नंबर याद रखें आप जो है, ठीक, जरूर। हाँ, कोई भी बीमारी हो, बच्चों की बीमारी हो, लेडीज की बीमारी हो, लेडीज बहुत परेशान रहती है, कई बीमारी जो है, लोगों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम्स है, ट्यूमर है उनके, फाइब्रॉइड हो जाता है, तो इसकी है, बच्चों को ऑटिज्म है, ऑटिज्म बहुत बच्चे हैं, ऑटिज्म का जो है एस्मा है बच्चों को, बच्चों को एस्मा आम है यहाँ पे बीमारी जो है, स्किन की एक्जिमा बहुत कॉमन है लोगों को जो है, तो एक्जिमा, इसलिए कोई भी बीमारी है बहुत हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अभी आपके एक ही आए थे हमारे पास जो कुछ आपका रेडिएशन के आए थे, तो काफी मैं कहीं ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, लेकिन हमने उनको कहा, मैं क्या देखिए हमारा ट्रीटमेंट आप आपको पता लग जाएगा जो है विद इन 15 डेज जो है, मतलब की देखिये यदि आप दवाई लेते हैं, देखिए मेडिसिन है ये, हम कहते हैं कि ये मेडिसिन है, मेडिसिन ये नहीं कि होम्योपैथी लोग कहते हैं स्लो है, स्लो नहीं है, ठीक है ना, स्लो बहुत फास्ट है, कहीं जहाँ पे फास्ट काम करनी है वहाँ फास्ट काम करती है, यहाँ पे स्लो, स्लो का मतलब यदि आपको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है और बीमारियां हैं तो वहाँ पे स्लो, क्योंकि उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो हर बीमारी में फास्ट नहीं काम करती है, तो कहीं पे फास्ट कहीं पे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हर बीमारी ठीक होती है, जो भी ठीक, जो भी आपको कोई कोई बीमारी है जरूर ठीक होती है। अब हम लोग जो है किडनी के बारे में बात करते हैं, यूनिट और यूनिट इन्फेक्शन बहुत खास करके लेडीज में ये ज्यादा होता है, तो ये बहुत लोग एंटीबायोटिक ले लेके परेशान रहते हैं, तो देखिए हमारे इसमें क्या होता है, किडनी होती है, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, चार चीजें होती हैं इसमें हमारे जो ये जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, बर्निंग होगी आपके यूरिन में जो है, ठीक है ना, पेशाब थोड़ा थोड़ा आएगा, कभी कभी जो है यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, तो और कभी कभी स्मेल आती आ सकती है उसमें जो है, और कभी आपका यूरिन जो है जैसे कोला टाइप का या टी टाइप का कभी डार्क भी हो सकता है, और कभी पेन आपके लोअर एब्डोमिन में पेन जो है, तो ये मोस्टली ये सिम्टम होते हैं, तो और किडनी में भी आपको इन्फेक्शन है तो उसमें आपके बैक साइड में जो है टेंडरनेस होगी, और बैक साइड में अपर बैक में जो है, और इसमें एक मेन सिम्टम होता है इसका, यदि इन्फेक्शन है तो आपको ठंड लगेगी और फीवर और कच्चा जो है मतलब नाशिया होता है, ये मोस्टली सिम्टम होते हैं यदि आपके उसमें जो है इन्फेक्शन हो गया जो है। और ये किडनी स्टोन अभी हमारे पास, यदि आप देना चाहें हमारे पास एक पिक्चर भी किसी ने भेजी है, उनके स्टोन था किडनी में जो है, वो जो है मेडिकल हफ्ता भी नहीं लगा जो है किडनी स्टोन बाहर आ गया तो इतनी कमाल की दवाइयां हैं। तो किडनी स्टोन देखिए कई तरह का होता है, यूरिक देखिए कईयों का यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके वजह से गाउट भी हो जाता है लोगों को जो है, वो यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड की वजह से कैल्शियम स्टोन होता है, स्टेज हॉर्न स्टोन होता है, सिस्टीन स्टोन, ये मोस्टली स्टोन होते हैं, तो ये और क्या होता है, कारण क्या होता है इसमें स्टोन का जो है, हाई प्रोटीन डाइट या हाई प्रोटीन हो जाती है, लो आप पानी कम पीते हैं उसकी वजह से यूनिट इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, ओबेसिटी यदि आपको मोटापापन है उसकी वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी रहता है, मोस्टली ये कारण होते हैं इसके स्टोन के जो है, तो जिन लोगों को स्टोन हो जाता है जो है। और यूरिक देखिए ऐसा होता है ना, कईयों की किडनी जो फेल होती है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं लोगों को जो क्या कारण होता है, किडनियां जो है फेल कारण होता है, देखिए दो, एक तो इन्फ्लामेशन हो सकता है उसमें जो है, ठीक है ना, नंबर दो जब उसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस होते हैं उसमें आपके जो है जाके जो है कोई भी या तो आपका फैट हो गया या और आपका टॉक्सिन है वो जाके स्टोर हो जाते हैं, वो उसकी वजह से उसका जो है ब्लॉकेज हो जाती है, तो इन्फ्लामेशन मोस्टली इन्फ्लामेशन होता है. तो इन्फ्लामेशन के लिए कोई डॉक्टर के क्या इनके पास स्टेराइड हो जाओ इसलिए वो देते नहीं है क्योंकि उनके साइड इफेक्ट होते हैं. तो इसलिए यदि आपको लग रहा है कि किडनी फंक्शन यदि आपका प्रॉब्लम है यदि कम है जरूर होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी दवाई है. किडनी फंक्शन इसको डिले नहीं करें. फिर आपको क्या देखिए डायलिसिस क्यों करते हैं. डायलिसिस क्या होती है आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होता है वो जी. तो फिल्टर उसको करते हैं आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन. हम लोग पास दवाइयाँ ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके फिल्टर